ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुरंग में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार के समन्वय में भारत और चीन की टीमें तैनात। रसुआ के भोटेकोशी बाढ़ में अब तक 675 लोगों की मौत की पुष्टि। 2498 लोग अभी भी लापता। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, पर राष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल का कथन। और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित हथियारों के गोदाम पर रूसी हमला, कम से कम 37 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि आपदा से हुए भारी नुकसान के पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की जरूरत है। परराष्ट्र मंत्रालय में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में परराष्ट्र मंत्री खनाल ने बताया कि पूर्वाधार, सड़क नेटवर्क, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई है और वर्तमान में नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन का काम पूरा होने के बाद ही पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक योजना और सहयोग का खाका तैयार किया जाएगा। मंत्री खनाल ने बताया कि आपदा के बाद बचाव और राहत के लिए पड़ोसी देश भारत से अब तक 57 टन से अधिक राहत सामग्री प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से भी आवश्यक राहत सामग्री प्राप्त हो रही है। मंत्री खनाल ने कहा कि बचाव और खोजी अभियान जारी होने के कारण मृतकों, लापता लोगों और क्षति के आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने नेपाल सरकार आम नागरिकों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यमों से केवल आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई सूचनाओं पर विश्वास करने और अपुष्ट रिपोर्टों को प्रकाशित या प्रसारित न करने की अपील की। बाढ़ के कारण कई विदेशी नागरिकों के भी लापता होने के चलते मंत्रालय में एक अलग आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मंत्री खनाल ने बताया कि नेपाली सुरक्षा एजेंसियां और अन्य टीमें स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल रही हैं, लेकिन पड़ोसी देशों से विशेष रूप से सुरंग बचाव और फॉरेंसिक कार्यों के लिए सहायता मांगी गई है। उन्होंने बताया कि सुरंग बचाव के लिए भारत से 11 सदस्यीय विशेषज्ञ की टीम पहले ही तैनात की जा चुकी है। सरकार ने दाता सम्मेलन के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री खनाल ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय के बीच समन्वय कर दाता सम्मेलन के बारे में आवश्यक निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ का प्रभाव नेपाल के कुछ सीमित जिलों तक ही पड़ा है। उन्होंने जानकारी दी कि काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन और सगरमाथा सहित नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थल सुरक्षित और खुले हुए हैं। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण रसुआ और नुआकोट के बिजली उत्पादन गृहों की सुरंगों में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार के समन्वय में मित्र राष्ट्र भारत और चीन की टनल रेस्क्यू टीमें तैनात की गई है। नेपाली सेना अपने संसाधनों से सुरंगों में फंसे नागरिकों की खोज और बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। हालांकि बंद सुरंगों में फंसे जीवित नागरिकों के बचाव तथा मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण और शव गृह प्रबंधन के लिए भारत और चीन से सहयोग लिया जा रहा है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने रेडियो नेपाल को दी। प्रवक्ता पौडेल ने बताया कि भोटेकोशी नदी की बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए भारत, चीन सहित विभिन्न देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय दाता निकायों और संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हो रहा है। परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता पौडेल के अनुसार भोटेकोशी नदी की बाढ़ में फंसे विभिन्न देशों के 120 से अधिक विदेशी नागरिकों का बचाव किया जा चुका है और अभी भी करीब 500 विदेशी नागरिक लापता है। मंत्रालय के अनुसार चीन सरकार 30 बेली ब्रिज और 2000 शवों के प्रबंधन के लिए एयर टाइट बैग उपलब्ध कराने वाली है। रसुआ में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 675 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 2498 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से रसुआ में 13, नुआकोट में 51, धादिंग में 45, चितवन में 246, गोरखा में 57, तनहू में 35, नवलपरासी पूर्व में 165 और नवलपरासी पश्चिम में 66 शव मिले हैं। अब तक 2301 लोगों का उद्धार किया जा चुका है। वहीं विभिन्न स्थानों से उद्धार किए गए गंभीर घायलों को इलाज के लिए काठमांडू घाटी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया, जिनमें से 140 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता भीष्मराज आङदेम्बे ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह बालेन से मुलाकात कर भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के बचाव और राहत के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आज हुई मुलाकात में नेता आङदेम्बे ने बाढ़ प्रभावित नुआकोट के ढूंगे बाजार, देवीघाट समेत विभिन्न क्षेत्रों का स्थलगत निरीक्षण करने के बाद सरकार को 9 सूत्रीय ध्यानाकर्षण पत्र सौंपा। उन्होंने रसुआ, नुआकोट और धादिंग में राहत एवं बचाव के दौरान सामने आई समस्याओं का तत्काल समाधान करने तथा हवाई बचाव अभियान को और प्रभावी बनाने की मांग की। नेपाली सेना के बचाव कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने रसुआ और नुआकोट के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर बचाव इकाइयां तैनात करने का भी आग्रह किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भोटेकोशी में बुधवार आई बाढ़ में बहकर त्रिशूली नदी के गोरखा की ओर स्थित तट पर लाए गए शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। अब तक मिले 55 शवों में से 29 का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ ने दी। गोरखा की ओर स्थित तट पर रोजाना शव मिलने का सिलसिला बढ़ने के बाद व्यवस्थापन के लिए जिन शवों की पहचान न हो सकी है उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पर्याप्त व्यवस्थित शव गृह नहीं होने के कारण शवों के खराब होने, दुर्गंध फैलने और बीमारी फैलने की आशंका के चलते व्यवस्थापन के लिए शवों से आवश्यक डीएनए नमूने लेने के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। प्रमुख जिलाधिकारी श्रेष्ठ के अनुसार बाकी शवों को प्रदेश अस्पताल गोरखा और एनपीआई गोरखा अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। काठमांडू के महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में भोटेकोशी बाढ़ में घायल हुए 7 लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. गोपाल सेढ़ाई के अनुसार अस्पताल में कुल 29 घायलों का इलाज चल रहा था। इनमें से 6 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण 9 जल विद्युत परियोजनाओं के 537 कर्मचारी और श्रमिक अभी भी लापता हैं। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल के अनुसार रसुआ और नुआकोट में स्थित 9 जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कुल 898 लोगों में से 361 लोगों का बचाव किया जा चुका है और जबकि 537 लोग अभी भी लापता है। 216 मेगावाट क्षमता वाली अपर त्रिशूली एक जलविद्युत परियोजना से 576 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 254 लोगों का बचाव किया जा चुका है। ईपान के अनुसार इसी परियोजना की सुरंग में अभी भी 300 श्रमिक और कर्मचारी फंसे हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इसी तरह 111 मेगावाट क्षमता वाली रसुआगढ़ी जलविद्युत परियोजना से 93 लोग लापता है। रसुआ भोटेकोशी जलविद्युत परियोजना से 4 लोग लापता है। लांगटांग खोला जलविद्युत परियोजना से लापता 42 लोगों में से अब तक 18 लोगों का बचाव किया गया है। इसी तरह चिली में हाइड्रोपावर से 8 लोग, मैलुंग खोला हाइड्रोपावर से 7 लोग, त्रिशूली जलविद्युत परियोजना से 1 व्यक्ति और देवीघाट जलविद्युत परियोजना से 1 व्यक्ति लापता है। अपर त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना से 42 लोग लापता है। अपर त्रिशूली 3B जलविद्युत परियोजना से लापता 122 लोगों में से 91 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। मिडिल त्रिशूली गंगा जलविद्युत परियोजना से 2 लोग लापता है। रसुआ में आई बाढ़ में मध्य प्रदेश के 154 लोग लापता बताए गए हैं। परिवार और रिश्तेदारों द्वारा पुलिस में दिए गए आवेदन तथा टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनका विवरण एकत्र किया गया है। ये जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस कार्यालय ने दी। मध्य प्रदेश पुलिस कार्यालय जनकपुर धाम के प्रवक्ता SSP प्रभु प्रसाद ढकाल के अनुसार रसुआ में लापता बताए गए लोगों में से सबसे अधिक सप्तरी जिले के हैं। उन्होंने बताया कि सप्तरी के 48 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। इसी तरह परसा के 39, बारा के 23, रौतहड़ के 17, मोहतरी के 17, सरलाही के 15, सिरहा के 10 और धनुषा के 5 लोग लापता बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार लापता लोगों में अधिकांश रोजगार और काम के सिलसिले में रसुआ पहुंचे थे। प्रारंभिक विवरण के अनुसार कुछ लोग रसुआ स्थित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत थे। हालांकि पुलिस ने नवीनतम अपडेट के अनुसार लापता सूची में शामिल कुछ लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के संपर्क में आ चुके हैं। पुलिस ने बताया कि परसा के ज्ञान बहादुर थिंग, श्यामलाल मोक्तान और ओमजर अंसारी संपर्क में आ चुके हैं। रौतहड़ के शेख कामीजल सहित कुछ अन्य लोग भी संपर्क में आ चुके हैं। इसी तरह सप्तरी के अजय हरिजन भी संपर्क में आ चुके हैं। अन्य जिलों से लापता बताए गए कुछ लोगों से भी संपर्क स्थापित हो चुके हैं। रसुआ के भोटेकोशी में आई बाढ़ में फंसे विभिन्न देशों के पर्यटकों में से 187 लोगों का उद्धार किया गया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जानकारी दी है कि बुधवार सुबह भोटेकोशी में आई बाढ़ के बाद लापता हुए पर्यटकों में से 187 लोगों का उद्धार किया गया है। उद्धार किए गए पर्यटकों में भारत के 114, चीन के 27, दक्षिण कोरिया के 20, जर्मनी के 4, बेल्जियम के 1, बुल्गेरिया के 1, इटली के 3, माल्टा के 4, ओमान के 1, पोर्तुगल के 1, रूस के 2, स्पेन के 2, स्विट्जरलैंड के 2, टर्की के 2 और अमेरिका के 3 पर्यटक शामिल है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार बाढ़ के बाद अब भी 420 पर्यटक संपर्क विहीन है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन की राजधानी कीव के पश्चिमी इलाके में स्थित बूचा जिले में मीला गांव में रूसी ड्रोन हमले के बाद हथियारों के एक गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ। घटना में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूसी ड्रोन ने शुक्रवार रात गोदाम को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां रखे हथियारों और विस्फोटक सामग्री में जोरदार धमाके हुए और भीषण आग फैल गई। आग की चपेट में आसपास के आवासीय इलाके भी आए। कम से कम 50 आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुरंग में फंसे लोगों के बचाव के लिए सरकार के समन्वय में भारत और चीन की टीमें तैनात। रसुआ के भोटेकोशी बाढ़ में अब तक 675 लोगों की मौत की पुष्टि। 2498 लोग अभी भी लापता। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल का कथन। और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित हथियारों के गोदाम पर रूसी हमला, कम से कम 37 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।